समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और रोज की तरह ये सुबह विदाई है एक नए उजाले के साथ, एक नई उम्मीद की किरण। कहते हैं जिंदगी में जब हम किसी को निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व को और बड़ा कर देती है। जैसे कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है और जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है।
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।
तो आइए इसी विचार के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश की ताजा तरीन समाचार, साथ ही वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस एडिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट रेनू कटारिया। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और रेनू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
Good morning, Siddharth, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. And as you very rightly said, Siddharth, today we have so much in store for all our listeners. We have international news, national news, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is the 22nd of March 2024. But before that, we will also talk about the significance of this day, the 22nd of March 2024, for all of us, as we are also celebrating World Water Day today. So, what would you like to talk about that, Siddharth?
जी हाँ, इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है और जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तक की सुर्खियों की।
जी,
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने श्री केजरीवाल को कल रात उनके दिल्ली स्थित निवास से गिरफ्तार किया और अपने कार्यालय ले गई। इससे पहले कल शाम मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास स्थान पर पहुंची ईडी की टीम ने उनके आवास की तलाशी भी ली। श्री केजरीवाल को इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किसी तरह का संरक्षण दिए जाने से इंकार किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने श्री केजरीवाल का नाम दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में शामिल किया है और उन्हें एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए 9 समन भेजे थे। हालांकि श्री केजरीवाल ने सभी समन को गैर कानूनी राजनीति से प्रेरित बताया तथा वे एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को निरस्त कराने तथा मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
The Commission has made public a data set of electoral bonds, including their numbers, that can help match their purchasers with the political parties that received the funds. The separate list of the donors and recipients were published by the poll body on its website after the details were submitted to it by the State Bank of India after the order of the Supreme Court. The State Bank of India was the only bank authorized to sell and redeem the bonds, which were first issued in March 2018 and were being sold until the scheme was declared null and void by the top court last month. The Election Commission said it has uploaded the data on electoral bonds on its website as received from SBI on as-is-where-is basis.
राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA ने कल साजिश विस्फोटकों और IED के निर्माण और आतंकी संगठन ISIS के लिए धन जुटाने में शामिल 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। नई दिल्ली में पटियाला हाउस की विशेष NIA अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। अधिकरण ने कहा है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन के भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल थे। जांच से पता चला है कि वे चरमपंथी और हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने में भी शामिल थे।
The Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, inaugurated the accommodation block Viram during his three-day visit at Vishakhapatnam for DSC personnel at Naushakti Nagar, Vishakhapatnam. The Viram block comes with contemporary conveniences such as a cookhouse featuring a bioglass pond, a fully equipped gymnasium, recreational amenities, and a comprehensive library. With its state-of-the-art facilities, the building will serve as a morale booster for the DSC personnel, as was evident during their interaction with the CNS.
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी कर सोशल मीडिया पर सभी समर्थनकर्ताओं और प्रभावशाली लोगों से किसी भी रूप में ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म के सरोगेट विज्ञापनों सहित सभी विज्ञापनों और प्रचार सामग्री दिखाने से परहेज करने को कहा है। मंत्रालय ने उपभोक्ताओं विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के वित्तीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों को देखते हुए ये परामर्श जारी किया है। ने आग्रह किया है कि इस परामर्श के अनुपालन में विफलता पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
Congress President Mallikarjun Kharge has said that impartial election is important for the smooth functioning of democracy. He said that a level playing field must be created to save the democracy. In a media briefing in New Delhi yesterday, Mr. Kharge alleged that Congress party's bank accounts have been frozen, which must be set aside so that Congress can use its funds during the upcoming elections. Meanwhile, BJP came down heavily on the Congress party's accusation of freezing of its bank accounts. In a media briefing in New Delhi, BJP spokesperson Sambit Patra said, if you're a defaulter, you will be treated like one. He alleged that it is not the bank account of the Congress party that has frozen, but the Congress itself has frozen.
और अब बात स्पोर्ट्स की। स्विट्जरलैंड के बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन में सेंट जैकबशील एरिना में किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत समेत शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को सीधे सेटों में हराया, जबकि युवा किरण जॉर्ज ने पहला गेम हारने के बावजूद फ्रांसीसी खिलाड़ी एलिस लैनियर को हराया। इस बीच प्रियांशु राजावत ने चीन के लई लैंगसी को हराया। इससे पहले भारत की गायत्री गोपीचंद और टीसा चौली आज महिला डबल्स वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। उन्होंने एक अन्य भारतीय जोड़ी प्रिया कोंजिंग पाम और श्रुति मिश्रा को सीधे सीटों में हराया।
And Siddharth, there's some more news in our ongoing series focusing on state profiles during the Lok Sabha elections. We will now present details regarding Maharashtra, which has a total of 48 Lok Sabha seats. The state has the maximum number of Lok Sabha seats after Uttar Pradesh. Out of 48, 5 seats are reserved for SC candidates, 4 for ST candidates and 39 seats are unreserved. In the 2019 elections, BJP emerged as the largest party with 23 seats, followed by Shiv Sena with 18 seats. This year, the electoral battle in Maharashtra has become interesting because of the split in major parties. The Congress has released a list of 57 candidates for ensuring Lok Sabha polls. Former Arunachal Pradesh Chief Minister Nabam Tuki will contest from Arunachal Pradesh seat, while former Puducherry Chief Minister Vaisinlingam to contest from Puducherry Lok Sabha seat. Leader of Congress Party in current Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, to contest from Behrampur in West Bengal.
और श्रोताओं, मुख्य समाचारों के बाद कार्यक्रम आज सवेरे में अब समय हो चला है प्रमुख महानगरों की खबरों का। सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार सुनते हैं दिनों से।
थैंक यू सिद्धार्थ। आई विल बिगिन विद द चेन्नई मेट्रो फर्स्ट। द सदर्न रेलवे हैज रजिस्टर्ड 2,632 केसेस फॉर अनऑथराइज्ड अलार्म चेन पुलिंग एंड 2,618 पीपल वर अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड टिल मार्च 2023-24। The railways also collected rupees 15,45 as fine. In many instances, people who have pulled the chain are those who have come to see off their relatives but failed to get down before the train departed. The railways have said that in case of an emergency or grievance, passengers should first inform the travelling ticket examiner in charge of the coach. People are also advised to contact Rail Madad Helpline 139 for all rail-related complaints and grievances. And some more news from Chennai Metro. From March 22nd to 25th, there will be a Silver Jubilee reunion for women who completed the Women's Special Entry Program and Short Service Commission at Chennai Officers Training Academy 28 years ago. Reunion, storytelling and honoring the memories of their time at the academy will take place at the Alma Mater for former comrades from all over the world. Originally scheduled for 2021, the event was rescheduled because of COVID-19 restrictions. A somber ceremony will also be performed to honor the necks of the king of their comrades who gave their life in the service of the country, according to a press statement from the OTA. And Siddharth, moving on to Bengaluru. Due to the city's drinking water crisis, Dr. Ram Prasad Manorath, the chairman of the Bangalore Water Supply and Sewage Board, or BWSSB, has advised Bengaluru's hotels and restaurants to practice water conservation. Dr. Manohar stressed the need for group efforts to reduce needless waste of this valuable resource during a meeting with hotel owners and association leaders in Bengaluru yesterday. He extended an offer for BWSSB to work with hotels and restaurants on this project, providing discounted rates for the delivery of treated water. In response to the Hotel Owners Association's request, the BWSSB promised to supply water-saving stickers that can be installed in areas of hotels and restaurants with excessive water usage. Dr. Manohar underlined that commercial holy celebrations with rain dances and pool activities are not allowed to use water from the Kaveri or bore wells. He asked the association's members to spread the word about this information and take the appropriate precautions to avoid misuse. And the last news I have is from Hyderabad Metro. Hyderabad has recorded a significant improvement in terms of air quality during the past 4 years. As per the World Air Quality Report 2023, the Telangana capital city has shown an improvement in the air quality in 2023 when compared to the previous years from 2019. The Telangana State Pollution Control Board, or TSPCB, said the data collated during the past four-year period shows the concentrations of particulate member 10 matter 10 micrometers or less in diameter called PM10 in Hyderabad dropped down considerably. The PM10 recorded at 101 micrograms per cubic meter in the year 2019-20 has dropped to 83 micrograms per cubic meter in 2023-24. And with that good news, I'm handing over the mic to Siddharth, who will give us some more news from the metros Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी हाँ रिनू, नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली के समाचारों पर। सबसे पहले दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के साथ लगभग 250 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने 22 जगहों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुल 428 चालान जारी किए गए। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य फोकस शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरलोड वाहन और दोषपूर्ण नंबर प्लेट थे। श्री कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ पूर्वी, केंद्रीय और उत्तरी रेंज में रात के दौरान 2 घंटे के लिए यह अभियान चलाया। संबंधित अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में विशेष जांच की, बारीकी से निगरानी की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। तो रेनू, हमारे जितने भी लिस्टनर्स हैं और जो लोग हमें स्पेशली गाड़ी में सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि इस खबर को जानने के बाद अब आप अपनी जो वाहन की स्पीड है, अपनी गाड़ी की स्पीड है, उसे आप कंट्रोल में रखेंगे और साथ ही साथ खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप ट्रैफिक के इन सभी नियमों का पालन करेंगे।
यस प्लीज।
बढ़ते अगली खबर की ओर। होली का त्यौहार आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और रिव्यू से लेकर तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में वो लोग जो त्यौहार अपने होम टाउन में मनाना चाहते हैं या दिल्ली से अपने होम सिटी में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे 93 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार देशभर में 540 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। दिल्ली से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा के अलावा गोरखपुर, मुंबई, कोलकाता पुरी, गुवाहाटी रांची, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। मंत्रालय के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल 219 अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। रेलगाड़ियों के सुचारू परिचालन के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों की आपात ड्यूटी भी लगाई गई है। तो अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया है तो अब इस खबर को सुनने के बाद आप अपना प्लान जरूर बना सकते हैं। और अब समाचार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। आयकर विभाग ने आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मुंबई में धन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने कार्यालय में 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष में एक चुनाव व्यय निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है और ये मतदान की तारीख तक चलेगा। आयकर विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियंत्रण कक्ष को टोल फ्री नंबर 1800221510 पर नकदी या कीमती सामान की आवाजाही के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आप 8976176276 या 8976767776 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने होली त्योहार के दौरान अनधिकृत पेड़ काटने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। बीएमसी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि अगर वे ऐसी घटनाएं देखते हैं तो तुरंत बीएमसी अधिकारियों और स्थानीय पुलिस स्टेशनों को सूचित करें या टोल फ्री नंबर 1916 पर संपर्क करें। विज्ञप्ति के अनुसार महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थानीय वन और वृक्ष अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को काटना अपराध है, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी ने मुंबई करों से पर्यावरण के लिए इन्हें संरक्षित करने की भी अपील की है। और अब नजर डालते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की खबरों पर। कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से गार्डन रीच में इमारत गिरने की घटना पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवरणम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कल एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने घटना पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा और अब तक किए गए पुनर्वास और पुनरुद्धार उपायों के बारे में जानकारी ली। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। और श्रोताओं, अब हम लेते हैं मौसम का हाल और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। आज का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है और कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अब आप बताएं कि देश के बाकी महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है।
यस सिद्धार्थ, इन चेन्नई इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। एंड हैदराबाद इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 22 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस।
और कार्यक्रम आप सवेरे में वक्त हो चला है आज के दिन की इतिहास से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को जानने का। और सबसे पहले बात करते हैं 1890 की, जब रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय बने थे।
आई गो अ लिटिल अर्लियर इन हिस्ट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट 1709। ऑन दिस डे इट इज अज्यूम्ड दैट गोस्वामी तुलसीदास स्टार्टेड राइटिंग हिज ग्रेट एपिक रामचरितमानस इन समवत 1631। इन 1739 नादिर शाह एंटर दिल्ली। ही गेव द सिग्नल to one of his soldiers from Sunehri Mosque, and in 1793 Lord Cornwallis promulgated permanent settlement in Bengal and Bihar to fix the revenue amounts once and for all to be paid by the zamindars every year.
1923 में आज के दिन पहली बार आइस हॉकी मैच का रेडियो से प्रसारण हुआ था। और हमेशा रेडियो में जब भी कोई कमेंट्री आती है, आंखों का हाल प्रसारित होता है, तो हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल। एंड द आईपीएल बिगिंस टुडे, तो उसके ऊपर भी हमारे लिसनर्स का बहुत ध्यान होगा। एंड 1902 ऑन दिस डे द ग्रेट ब्रिटेन एंड पर्शिया अग्रीड टू लिंक यूरोप एंड इंडिया बाय टेलीग्राफ। 1942, both Congress and Muslim League refused the Cripps mission offer. Congress adopted the Quit India resolution, and Cripps Commission came to India, which was preceded by Sir Stafford Cripps to find out the political formula for transfer of power to Indians.
और 1969 में आज ही के दिन भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड का उद्घाटन हुआ और 2020 में आज ही के दिन कोविड 19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया था और आज एक खास दिन है जिसके बारे में हमने पहले भी
वेरी इम्पोर्टेंट डे टुडे
बिल्कुल आज विश्व जल दिवस है और श्रोताओ जैसा कि हमें मालूम है कि दुनिया का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है लेकिन आपको बता दें कि इसमें से जो पीने वाला पानी है वो लगभग इसका 3% ही है 97% पानी ऐसा है जो पीने लायक नहीं है अब देखिए ना 3% पानी पर पूरी दुनिया जीवित है
जी बिल्कुल एंड या सिद्धार्थ आई नो देयर सो मच दैट वी कैन टॉक अबाउट बट हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट वाटर कैन क्रिएट पीस और स्पार्क कॉन्फ्लिक्ट जैसे आपने बताया कि सिर्फ 3% पानी ही हमारे पास पीने योग्य है सो वेन वाटर इज स्कैर्स और पोल्यूटेड और वेन पीपल हैव अनइक्वल और नो एक्सेस टेंशंस कैन राइज बिटवीन कम्युनिटीज एंड कंट्रीज
और अगर हम देखें तो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में एक वर्ष में उपयोग की जाने वाले जल की शुद्ध मात्रा अनुमानित 1121 बिलियन क्यूबिक मीटर है जबकि 2025 में जो पीने वाले पानी की जो मांग है वो 1093 और 2050 तक बढ़कर 1447 बीसीएम तक पहुंच सकती है तो अब जबकि हमारे पास पानी बहुत कम है तो हमको जल का संरक्षण करना है और ये बता दें कि वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और उसी दिन विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई और बाद में 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया तब से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा वहीं वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षित स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में भी मान्यता दी गई है और इस बार जो विश्व जल दिवस है उसकी जो थीम है वो है शांति के लिए जल का लाभ उठाना
वाटर फॉर पीस वेरी ट्रू सिद्धार्थ एंड वी कोऑपरेट ऑन वाटर वी क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव रिपल इफेक्ट फॉस्टरिंग हार्मनी जनरेटिंग प्रॉस्पेरिटी एंड बिल्डिंग रेजिलियंस टू शेयर चैलेंजेस So, dear listeners, on this World Water Day, why don't we all need to unite around water and use water for peace, laying the foundations of a more stable and prosperous tomorrow.
जी हाँ और कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त है उन शख्सियत को याद करने का जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हुए आज ही जयंती है भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और अमर शहीदों में गिने जाने वाले सूर्य सेन की
ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे ऐ वतन
सूर सेन को लोग शिक्षक होने की वजह से प्यार से मास्टरदा कहते थे चटगांव आर्मरी गेट के नायक मास्टर सूर सेन ने अंग्रेज सरकार को सीधे चुनौती दी थी सरकार उनकी वीरता और साहस से इस तरह हिल गई थी कि जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्हें ऐसी हृदय विदारक और अमानवीय यातनाएं दी गई जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की अलख जगा दी 12 जनवरी 1934 को सूर सेन को तारकेश्वर दस्तीदार के साथ फांसी की सजा सुना दी गई
तलवार का सामना चाहे हो खूनी तलवार का सामना सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाए
देश के इस महान सपूत को आज सवेरे की पूरी टीम का सलाम
And today we are paying tribute to Ramasamy Ganeshan, better known by his stage name Gemini Ganeshan, who was an Indian actor who worked mainly in Tamil cinema. He was referred to as the Kadal Manan or the King of Romance for his romantic roles in films. A recipient of the Padma Shri in 1971, he had also won several other awards including the Kalai Mamani, the NGR Gold Medal and the Screen Lifetime Achievement Award. He was, Siddharth, very interesting. He was one of the few college graduates to enter the film industry then. And Gemini Ganeshan acted in a few Hindi films, most of which were remakes of his Tamil films. His first Hindi film was Missy Amma's remake, Miss Mary, 1957, which became one of the biggest Indian hits of that year. And here I would want our listeners to listen into these two beautiful songs from this movie, Miss Mary.
वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सब की आंखों का तारा,
वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सब की
और श्रोताओं आज ही जन्मदिन है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार रागिनी त्रिवेदी का। रागिनी विचित्र वीणा सितार और जल तरंग पर अपनी प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लेती हैं। रागिनी त्रिवेदी विचित्र वीणा वादक और संगीतज्ञ के लालमणि मिश्र की पुत्री हैं। वो डिजिटल संगीत संकेतन प्रणाली की निर्माता है जिसे ओमे स्वरलिपि कहा जाता है। श्रोताओं आज ही जयंती है उर्दू के प्रसिद्ध पत्रकार और समाज सुधारक मुंशी दया नारायण निगम की। मुंशी दया नारायण निगम का जन्म 22 मार्च 1882 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। मुंशी दया नारायण 20वीं सदी के प्रारंभ में कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे। इन्होंने प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रकाशित की। मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी जमाना में ही पहली बार प्रकाशित हुई थी और अगर हम देखें तो इन्होंने साहित्य में बहुत सारा काम किया।
Today is the birthday of Laura Jean Reese Witherspoon, who is an American actress and producer. She is a recipient of various accolades, including an Academy Award, a Primetime Emmy Award, and 2 Golden Globe Awards. She began her career as a teenager, making her screen debut in The Man in the Moon. Her breakthrough came in 1999 with a supporting role in Cruel Intentions for her portrayal of Tracy Flick in the black comedy Election. Today is also the birthday of William Shatner OC, who is a Canadian actor. In a career spanning 7 decades, he is best known for his portrayal of James T. Kirk in the Star Trek franchise from his 19th.
और आज हम हनुमान प्रसाद पोद्दार को याद कर रहे हैं जिनका नाम गीता प्रेस स्थापित करने के लिए भारत और दुनिया में प्रसिद्ध है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने देश के घर घर में गीता, रामायण, वेद और पुराण जैसे ग्रंथ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
And today is the birthday of Andrew Lloyd Webber, or Baron Lloyd Webber, who is an English composer and impresario of musical theatre. Several of his musicals have run for more than a decade, both in the West End and on Broadway. He has composed 21 musicals, a song cycle, a set of variations, 2 film scores, and a Latin Requiem Mass. But here, first listen to, dear listeners, let's listen to Phantom of the Opera, composed by Andrew Lloyd Webber.
In the opera house, I know.
और श्रोताओं आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा सागर सरहदी ने, जो भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक थे। सागर सरहदी ने कभी कभी चांदनी, सिलसिला, नूरी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी। सन 1982 में रिलीज हुई फिल्म जिसे बहुत इंडियन क्लासिकल माना जाता है बाजार की हम बात कर रहे हैं, जिससे उन्होंने डायरेक्शन में डेब्यू किया था। और श्रोताओं घड़ी की शिया ये सारा कर रही हैं कि हम आपसे विदा लें। सिद्धार्थ और रेणु को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
But stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you, dear listeners, for tuning in. Have a very great day. Namaskar.
Namaskar.